Save big money on everything for your next bathroom project. Now at Menards. Upgrade your bathroom with Max. With more than 1,000 showers, bathtubs, and surrounds, you're sure to find exactly what you need to add luxury and style to your bathroom. Save big on our entire selection of Max bathroom products. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big.
नमस्कार। प्रधान सेवक बोले, एक बार फिर बोले, और इस बार एक ऐसी जगह बोले जहां उनका अपना ही दरबार था, अपना ही चैनल था, अपने ही लोग थे। और उन्होंने बताया कि पिछले 4 सालों में उनकी सरकार ने क्या हासिल किया है। वैसे कायदे से उनको 4 साल तो नहीं कहना चाहिए था, 4 साल और 6 महीने और कुछ दिन कहना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि समय है उनके पास, जबकि समय नहीं है। अगर 4.5 साल बीत चुके हैं और 6 महीने से भी कम वक्त रह गया चुनाव में, तो समय कहाँ रह गया? समय भी हाथ से फिसल गया। इतना बेहतरीन मौका था, 283 सीटें अपने आप आई थी पार्टी की, साथ में सहयोगी दल मजबूती से खड़े हुए थे, विपक्ष खत्म हो चुका था, कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी सिर्फ, 19 राज्यों में सरकारें थीं। इसके अलावा और क्या चाहिए? तब भी आप कुछ नहीं कर पाए, वो तो सब कुछ निकल ही गया हाथ से, वक्त भी निकल चुका है, 6 महीने से कम समय रह गया। लिहाजा कल जब वो बोले तो उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। अब आप देख लीजिए वायदे क्या थे 2014 के और उपलब्धियां अचीवमेंट क्या है। उनका कहना है, सुखी समृद्ध देश के लिए सकारात्मक खबरों की भी बहुत ज़रूरत है। देशवासियों में कुछ करने की इच्छा जगे, देश को आगे बढ़ाने की इच्छा जगे, ये बहुत आवश्यक है। जैसे स्वराज के आंदोलन की स्पिरिट थी, वैसे ही स्वराज्य के आंदोलन की ऊर्जा होनी चाहिए। बहुत भारी भरकम जुमला है ये, लेकिन जो बात हमें खटकी वो ये है कि सुखी समृद्ध देश के लिए सकारात्मक खबरों की भी बहुत ज़रूरत है। प्रधान सेवक साहब, खबरें सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, खबरें खबरें होती हैं। जो खबर है, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से, जो भी नया है, न्यू है और एक से ज़्यादा है, वो न्यूज़ कहलाता है। अब अगर खबरें ही ऐसी आएंगी जो आपको नकारात्मक लगे या आपको सकारात्मक लगे, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। खबरें खबरें होती हैं, नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होती। आप अपनी उपलब्धि नंबर एक उन्होंने गिनाई है। उनका कहना है कि इतनी जल्दी, सिर्फ 4 साल में, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की क्लब में शामिल होने के लिए कदम बढ़ा देगा। अब कदम बढ़ाना और क्लब में शामिल होना दो अलग अलग बातें हैं। आपकी यही लफाजी है, यही जुमलेबाजी है जिसमें से हमें समझाना पड़ता है लोगों को। मैं दोबारा बोलता हूँ, क्या पहले किसी ने सोचा था कि भारत इतनी जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्लब में शामिल होने के लिए कदम बढ़ा देगा? कल को सोमालिया भी कह सकता है कि मैं भी कदम बढ़ा रहा हूँ, हम भी कदम बढ़ा रहे हैं 5 ट्रिलियन क्लब में। पाकिस्तान भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है कि हम कदम बढ़ा रहे हैं। आप अभी मेंबर नहीं बने हैं। दूसरा, 4 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142 से 177 पर आ जाएगा भारत? ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है, वो कुछ बड़े उद्योगपतियों के लिए है इस देश में, सब जानते हैं। छोटे दुकानदार हों, मझोले उद्योगपति हों, छोटे उद्योगपति हों, छोटे मोटे कारोबारी हों, अभी तक सरकारी ब्यूरोक्रेसी के जाल में, मकड़ जाल में फंसे हुए हैं। अभी तक कोई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनके लिए नहीं है और उन्हीं पर ही अर्थव्यवस्था हमारी टिकी रही है अभी तक। आगे कहते हैं कि क्या पहले किसी ने सोचा था कि भारत में AC ट्रेन में चलने से ज़्यादा लोग हवाई जहाज में सफ़र करेंगे? क्या ये आपका चुनावी वायदा था 2014 में कि मेरी टर्म ख़त्म होते होते, मेरा कार्यकाल ख़त्म होते होते ज़्यादा लोग हवाई जहाज़ में चलेंगे AC ट्रेन के मुकाबले? 4 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि सब्जी वाला भी, रिक्शा वाला भी, चाय वाला भी भीम ऐप का इस्तेमाल करने लगे, रुपए डेबिट कार्ड से अपना आत्मविश्वास बढ़ाएगा? क्या ये वायदा था आपका ये भी 2014 में कि जो रिक्शा वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, वो कैशलेस इकोनॉमी में आएगा? आपने तो जिक्र तक नहीं किया था। कैशलेस इकोनॉमी का जिक्र तो नोटबंदी के बाद शुरू हुआ था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उनका कहना है कि क्या किसी ने सोचा था कि नेशनल वाटरवेज एक सच्चाई बन जाएगा, कोलकाता से एक जहाज गंगा नदी पर चलेगा और बनारस तक सामान ले आएगा। अगर आपने यही वादा किया होता 2014 में कि कलकत्ता से बनारस तक एक जहाज सामान लाया ले जाया करेगा, इसलिए हमें वोट दीजिए, लोग शायद दोबारा सोचते। ये चुनाव का वादा नहीं था और ये क्या शुरू हो चुका है हमें नहीं मालूम अभी तक। वैसे आज ही के दिन पिछले साल आपने लोगों को सी प्लेन के दर्शन भी करवाए थे जो किराए पर मंगाया गया था, जो आपने साबरमती नदी में उस पर सवारी की थी, उसका क्या हुआ? कहाँ कहाँ पर सी प्लेन चल रहे हैं? कोई जवाब नहीं। फिर इनका कहना है प्रधान सेवक का कि भारत एक बार में 100 सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड बनाएगा। वैसे सैटेलाइट 104 छोड़े गए थे और भारत ने एक बार में ही छोड़े थे, उसका जिम्मा उसका श्रेय आप नहीं ले सकते, वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को जाता है जो बहुत साल पहले आज़ादी के बाद से ही बना दी गई थी, उसका जिम्मा आप मत लीजिए। बहरहाल फिर इनका कहना है कि ये भी शायद चुनावी वादा था 2014 का, जो कह रहे हैं कि क्या किसी ने सोचा था कि हेलीकॉप्टर घोटाले का इतना बड़ा राजदार क्रिश्चियन मिशेल भारत में होगा, सारी कड़ियां जोड़ रहा होगा। क्या ये आपका चुनावी वायदा था कि ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जो है उसका जो एक बिचौलिया है उसको हम भारत ले आएंगे, ये आपने मतलब पिछले 4 साल में हासिल किया है? और फिर आखिर में इनका कहना है क्या 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि 1984 सिख नरसंहार के दोषी कांग्रेस नेताओं को सजा मिलने लगेगी, लोगों को इंसाफ मिलने लगेगा? एक बार फिर आपके मुंह से सच्चाई निकल गई या आप इसका भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो सरकार के तहत चलती हैं, सरकार के कहने से चलती हैं, आपके कहने से चलती हैं, जो श्रेय आप ले रहे हैं? जो वायदे थे, असली वायदे थे, नौकरियों के वायदे, 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट सिटीज, भारत को हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे मेक इन इंडिया के नाम से, स्किल इंडिया होगा, वो सब वायदे कहाँ गए? दूर दूर तक उनका जिक्र भी नहीं होता अब तो। और भी ऐसे बहुत से वायदे हैं जो आपको याद होंगे, बल्कि सामाजिक माहौल बिगड़ा है, लिंचिंग हुई है गोरक्षा के नाम पर, ले देकर आपके पास कुछ नहीं है इसलिए फिर हिंदू मुसलमान का राग शुरू कर रहे हैं, राम मंदिर की रागिनी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है, आपके पास दिखाने को सिर्फ यही है जिसका जिक्र कल आपने किया कि मतलब एसी ट्रेन से ज़्यादा लोग हवाई जहाज़ में उड़ते हैं। कुछ और सोचिए साहब, अब तो समय भी आपके हाथ से निकल चुका है। ये एक ऐसा दौर माना जाएगा हमारे इतिहास का जिसमें ऐसी सरकार, ऐसी ताकतवर सरकार ने अपना सारा समय गंवा दिया। ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रधान सेवक के साथ साथ सरकार की आंखें और हम सब की आंखें खोलने के लिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, उसका जिक्र तक नहीं हुआ, उसका जिक्र होता भी नहीं है आजकल। एक है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 की रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले कुछ साल तक से तो 2-3% तक था, लेकिन फिर 2015 में 5% हो गया, फिर नौजवानों की जो बेरोजगारी है वो 16% तक बढ़ गई है। दिस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द हाईएस्ट सीन इन इंडिया इन एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 साल में बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा फिगर है, सबसे ज़्यादा मतलब ये परसेंटेज है, 16% नौजवान हमारा बेरोजगार है। उनका ये भी कहना है कि अगर GDP में 10% की इंक्रीज जब होती है, GDP में जिसका अक्सर ढिंडोरा पीटा जाता है, उसमें अगर 10% की भी इंक्रीज होती है तो उससे सिर्फ 1% नौकरी बढ़ती है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है, ट्रेंड्स रिपोर्ट, 22 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। उनका कहना है कि सन 2017 में 1,83,00,000 नौजवान बेरोजगार थे और 2019 आते आते ये संख्या जो है बेरोजगार नौजवानों की 1,90,00,000 को भी पार कर जाएगी। अब ये आपकी अचीवमेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ बेरोजगारी का फ्रंट बता रहा हूँ, बाकी बातें बाद में आने वाले एडिशन में बताएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है मार्च 31, 2018 की कि 2,80,00,000 लोगों ने 90,000 रेलवे की नौकरियों के लिए अप्लाई किया है। नौकरियां 90,000 हैं, अप्लाई करने वाले 2,80,00,000 हैं। इससे एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि बेरोज़गारी की क्या हालत है। उसके अलावा एक और रिपोर्ट है इंडिया टुडे की, अगस्त 2018 की, चेक कीजिए आप। उसमें लिखा है कि 2,00,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं। किस काम के लिए? मुंबई पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए। पोस्ट है सिर्फ 1137 और 2,00,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। मुंबई मिरर इसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाता है। मुंबई मिरर के मुताबिक इन 2,00,000 लोगों ने जिन्होंने आवेदन दिया है, अर्जी दी है नौकरी की, पुलिस कांस्टेबल की, इसमें 167 MBA भी हैं, 423 इंजीनियर्स हैं, 543 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, 28 BEd डिग्री होल्डर्स हैं, 34 मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है, 159 MSc हैं, 3 BAMS हैं, 25 बैचलर्स हैं मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास MCOM की डिग्री है, उन्होंने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए अप्लाई किया है। और जबकि पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है सिर्फ 12वीं पास होना। आगे है जो हमारी बेरोज़गारी जो है, जो हमारी दर है बेरोज़गारी की, एम्प्लॉयमेंट इन द टोटल इंडियन इकोनॉमी। 27 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 0.1% से कम हुई 2015-2016 में, और 0.2% कम हुई 2014-2015 में। फार फ्रॉम मोर जॉब बीइंग क्रिएटेड, एम्प्लॉयमेंट हैज़ एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड। मतलब नई नौकरियां आना तो दूर, जो नौकरियां थीं वो भी कम होती जा रही हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की फिगर्स पे मत जाइए कि कितने लोगों ने अपने नाम भर्ती करवाए हैं, दर्ज करवाए हैं। ये कहना है क्लेम्स इंडिया, एक डेटाबेस होता है जिसको रिज़र्व बैंक इस्तेमाल करता है, रिज़र्व बैंक की बैंकिंग है, उसने ये वाली फिगर्स दी है। नीति आयोग ने कहा है, ये PTI की रिपोर्ट है, नीति आयोग के मुताबिक इंडिया फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ सीवियर अंडर एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी तो समस्या है ही, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक समस्या है, कि यानी जो मेरी योग्यता है, जो मेरी काबिलियत है, वैसा काम, वैसी नौकरी मुझे नहीं मिल रही। ये उनका कहना था 2017-2018-2019-2020 को लेकर। वॉट इज नीडेड इज द क्रिएशन ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी हाई वेज जॉब्स। जो ज़रूरत है वो ये है कि ऐसी नौकरियां पैदा की जाएं जिनमें तनख्वाहें भी ज़्यादा हों और जिनमें उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, काम भी ज़्यादा हो। ऐसी नौकरियां बनाने की ज़रूरत है, क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी इकॉनमी पटरी से उतरी हुई है, लिहाजा प्रधान सेवक पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।